पहाड़ और मेरा बचपन, दसवीं किस्त। जम्मू में नदी से मछलियां पकड़ना और अर्चना वर्मा की कॉपी से नकल करना। मेरे दिल्ली से दूसरी कक्षा पास करने के बाद हमारा परिवार जम्मू आ गया। तब तक परिवार में चार भाई बहन हो गए थे, पर मुझे छोटे भाई, जिसका नाम भीम रखा गया था, कि सिर्फ जम्मू की स्मृति है। मेरे पिताजी भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, उनकी पोस्टिंग उधमपुर में हुई थी। हम मुख्य उधमपुर से कुछ ही पहले चोपड़ा शॉप नाम की जगह के पास रह रहे थे। हमारा घर एक टीले जैसी जगह पर था, दोनों ओर खाई जैसी थी। एक ओर तो बड़ा सा नाला बहता था, जबकि दूसरी ओर पहाड़ी गार थी, जिसे मैं हमेशा नदी ही समझता रहा। जब मैं खुद फौज में गया और मेरी आखिरी पोस्टिंग भी उधमपुर में हुई, तो मुझे अपने बचपन की जगह को देखने की बहुत उत्सुकता हुई। इसलिए जब हम उधमपुर के करीब पहुंचे, तो मैंने फौजी गाड़ी के ड्राइवर को आराम से चलने को कहा, पर बहुत कोशिश के बाद भी मैं उस जगह को ठीक से पहचान न सका, क्योंकि जिस छोटी सी टिकड़ी पर हम रहते थे और जिसके एक ओर नाला और दूसरी ओर नदी थी, वो बेशुमार मकानों से पटी हुई थी। बहरहाल, बचपन में मैं जितने समय यहाँ रहा, मैंने नाले और नदी दोनों ही जगह से मछलियाँ पकड़ी। मैं सुबह शाम मछलियाँ पकड़ता था, सो इस काम में जल्दी ही बहुत पारंगत हो गया। हम नायलॉन की डोर खरीद के ले आते और उसके आगे हुक बांधकर करीब 2 फुट पीछे सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा बांध देते। यह लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता रहता और हुक इसी से नीचे लटका रहता। हमारी नज़र इसी सूखी लकड़ी पर बनी रहती। कांटे की नोक में जब कभी आटा लगाते तो कभी केंचुआ। चूँकि माँ आटा देने में आनाकानी करती थी, सो ज़्यादातर मैं केंचुओं से ही काम चलाता था। यानी मुझे मछलियाँ पकड़ने से पहले केंचुए पकड़ने पड़ते हैं। बरसातों में तो वे खूब मिलते हैं, पर सूखे मौसम में हमें पत्थरों को उठाकर उसके नीचे की गीली मिट्टी खोद खोद कर उन्हें निकालना पड़ता। मछली जब कांटे के मुँह पर लगा आटा या केंचुआ मुँह में लेकर भागती, तो ऊपर पानी के तल पर वह सूखी लकड़ी का टुकड़ा भी साथ में खींचता जाता, और उसमें हरकत देख हम डोर को अपनी ओर खींच लेते। कांटा मछली के मुंह के आर पार चला जाता और हम डोर खींचकर तड़पती मछली को बाहर निकाल लेते। वैसे उधमपुर में बचपन की उस छोटी सी नदी में मैंने सामान्य मछलियों से कहीं ज़्यादा ग्राउज कहे जाने वाले जीव का शिकार किया। यह पतला और लंबा होता था और इसके शरीर में बीचों बीच सिर्फ रीढ़ दौड़ती थी, पतली कांटेनुमा हड्डियों से बनी। ग्राउज को खाना ज़्यादा सुविधाजनक था, क्योंकि एक बार बीच का कांटा निकालने के बाद आप निश्चिंत होकर कौर को निगल सकते थे। क्योंकि मछली खाते हुए एक बार मेरे गले में कांटा फंस चुका था, इसलिए मैं मछली खाते हुए सावधान रहता और हमेशा ग्राउज पकड़ने की फिराक में रहता, ताकि आराम से खा सकूं। मैं पकड़कर घर लाता और माँ उसे कुछ ही देर में तल देती। छुट्टी के दिन या स्कूल वाले दिन भी मौका मिलते ही मैं नदी की ओर भागता और वहीं मछलियां पकड़ने के लिए दूसरे खेल खेलता रहता। इस नदी के किनारे मुझे सांपों के भी बहुत दर्शन हुए। एक बार तो मैंने एक साथ 10 या 12 सांप देखे। वे हल्के पीले रंग के पतले और छोटे सांप थे, शायद ताज़ा ही अंडों से फूट कर बाहर निकले थे। वे नदी के किनारे गीली मिट्टी में पसरे रहते। मुझे पता नहीं क्यों मछलियां पकड़ते हुए इस बात को लेकर डर लगता था कि कभी कांटे में कोई सांप फंस कर ना आ जाए। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं कांटे को बाहर खींचते हुए बहुत सतर्क रहता था। इस नदी के पानी में भी मैंने सांप तैरते हुए देखे थे। ज़्यादातर समय नदी का पानी मटमैला रहता था, लेकिन वैसे पानी में भी हम अक्सर नदी में उतरकर नहाते थे। तैरने का पहला प्रयास मैंने इसी नदी के पानी में किया था। साथ में खेलने वाले कुछ लोकल लड़के तैराकी में उस्ताद थे। उन्हीं में से किसी ने एक दिन मुझे तैराकी सिखाने के बहाने गहरे पानी में ले जाकर छोड़ दिया। मैं किसी तरह हाथ पैर मारकर किनारे पहुंचा। लड़के को मैंने गालियाँ तो बहुत बकी, पर अगले दिन से पानी का डर चला गया और मैं छपाक छपाक हाथ मारकर की जाने वाली देसी अंदाज में तैराकी सीखने लगा। जम्मू में खेल के अलावा पढ़ाई की भी कुछ स्मृतियाँ हैं। पहले यही कि नदी के किनारे खेलते हुए मेरी नज़र दूर पुल पर बनी रहती, क्योंकि मेरे पिता अपनी साइकिल पर इसी पुल से होते हुए आते थे। मैं उतनी दूर से भी पिताजी का साइकिल चलाना पहचान जाता। वे बहुत शरीफों की तरह साइकिल चलाते थे। वहाँ से उन्हें घर पहुँचने में जितना समय लगता वह मेरे लिए नदी के किनारे से भागकर घर पहुँचने और फटाफट हाथ मुँह धोकर किताब गोद में लेकर बैठने के लिए पर्याप्त होता था। रविवार को छोड़कर लगभग रोज़ ही यह दृश्य देखने को मिलता। पिता घर में घुसते तो मैं उन्हें पढ़ता हुआ ही दिखता, लेकिन मैं तो सिर्फ किताब ही खोल कर बैठा होता था। मेरा ध्यान तो खेलने में ही बना रहता। नतीजा यह कि मुझे लगभग हर टेस्ट में डबल अंडा मिलने लगा। गणित में मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे याद है एक बार मैंने गणित के यूनिट टेस्ट में साथ बैठी हुई लड़की से निकल कर कई सवाल सही कर दिए। मेरे 10 में से 6 नंबर आए, पर मुझे अपने टीचर से शाबाशी की जगह मिली मार, क्योंकि टीचर मेरे नालायक होने को लेकर इतने विश्वास से भरा हुआ था कि वह मेरे सही सवाल देखकर ही समझ गया था कि मैंने सारे सवाल नकल करके किए हैं। टीचर के हाथ मिली उस मार का सीधा असर मेरे नकल करने के आत्मविश्वास पर पड़ा। वह थोड़ा डिग गया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है जिसने बहुत बचपन में ही मुझे यह सिखाया कि दुनिया बहुत छोटी है और वक्त के साथ चीज़ें कई बार बिल्कुल पलट जाती हैं। मैंने गणित के उस टेस्ट में जिस लड़की की कॉपी से नकल की थी, मेरे पिथौरागढ़ जाने के 2 साल बाद उसके पिता का भी वहीं तबादला हो गया और एक बार वह फिर मेरी कक्षा में मेरे साथ बैठने लगी। लेकिन अब तक चीज़ें बदल चुकी थी। वह लड़का जो जम्मू में पढ़ाई के मामले में कभी सिफर से आगे नहीं बढ़ा, अब कक्षा के 3 सबसे मेधावी छात्रों में शामिल हो गया था। उस लड़की का नाम अर्चना वर्मा था और उसके पिताजी DGBR के तहत काम करते थे। अर्चना वर्मा के साथ 5वीं कक्षा की बातें विस्तार से मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि वे बहुत ही रोचक हैं। रोचक इस मायने में कि मुझे कई सालों तक ऐसा लगता रहा कि जैसे वह मन ही मन मुझे बहुत खास मानती थी। उसने मुझे खास माना या नहीं, पर यह जरूर है कि मैं उसे बहुत खास मानता रहा। मैं उसका नाम यहाँ लिखी इसलिए रहा हूँ कि क्या मालूम वह पढ़ ले और मुझसे संपर्क करे। बहुत बचपन के किसी ऐसे सहपाठी से इस उम्र में आकर मिलना जिसके लिए आपके अबोध मन में खास भावनाएं रही हों, कितना सुखद और विस्मयकारी हो सकता है, मैं महसूस करना चाहता हूँ।